Om Shanti. ओम का अर्थ होता है कि मैं एक आत्मा हूं, और शांति माना कि शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। तो जब भी कहें ओम शांति, तो आप इस स्थिति में स्थित हो जाएं कि मैं आत्मा हूं और शांत स्वरूप हूं। ठीक है, तो सभी एक बार बोले स्थिति में स्थित होकर ओम शांति। अब आज हम लेसन 4, अभी तक 3 लेसन्स पर चर्चा की। पहला, स्वयं की खोज कि मैं कौन हूं। दूसरा, परमात्मा अनुभूति, परमात्मा कौन है। तीसरा, डीप मेडिटेशन, और आज लेसन 4, परमात्मा का अवतरण। आज तक आपने अनेक मनुष्य आत्माओं की जीवन कहानी सुनी होगी, पर आज हम आपको एक ऐसे मानव की विचित्र जीवन कहानी सुनाएंगे जिसके तन में स्वयं ज्योति बिंदु स्वरूप सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने प्रवेश किया, या जिस मनुष्य ने अपने सारे जीवन को उस प्रभु पिता के प्रति समर्पित किया, या ये जो आप सामने फोटो देख रहे हैं ना, आपका जीवन परिचय। अब इनके ही तन में शिव बाबा ने क्यों प्रवेश किया ये आगे बताएंगे, पर हां इतना जरूर कहते कि कई लोग सोचते हैं कि परमात्मा को इस धरती पर आने की क्या आवश्यकता, वो तो सर्वशक्तिवान है, वो चाहे तो परम धाम से बैठा बैठे ही सब कुछ बदल दे। तो ठीक है, बाबा सर्वशक्तिवान है, वो जो चाहे वो कर सकता है, पर मान लीजिए कि बाबा परम धाम से ही तरंगे वाइब्रेशंस प्रेरणाएं दे रहा है, पर हमारा रेडियो सेट ठीक नहीं है, तो हम परमात्मा की पवित्र प्रेरणाओं को कैच नहीं कर सकते, इसलिए उसको आना पड़ता है हमें बदलने। और वैसे भी परमात्मा की महिमा में गाते हैं कि तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। तो जरूर उसने कभी न कभी हम सब आत्माओं को मात पिता बनकर पालना दी होगी, तभी तो गाते हैं। जरूर उसने कभी न कभी हम सब आत्माओं का दोस्त बनकर साथ निभाया होगा। ऐसे थोड़ी किसी की महिमा गाते, कोई कुछ करके जाता है तभी तो महिमा गाते ना। तो जरूर उसने कभी न कभी हम सब आत्माओं का सतगुरु बनकर सतगति की होगी। तो परमात्मा का अवतरण इस पूरे ही सृष्टि चक्र के अंदर, इस पूरे ही ड्रामा के अंदर रंगमंच पर एक विचित्र किंतु संपूर्ण सत्य वृत्तांत है। गीता में भी कहा कि जब जब धर्म की ग्लानी हुई तो मुझे आना पड़ा। तो चलिए आज हम सुनेंगे एक अलौकिक मानव की विचित्र जीवन कहानी कि जिसके तन में स्वयं ज्योति बिंदु सर्वशक्तिवान परम पिता शिव बाबा ने प्रवेश किया। आपको पहले ही बताया कि परमात्मा को अपना शरीर नहीं है, वो तो एक बिंदु स्वरूप है, तो उसको दिव्य कर्तव्य करने के लिए किसी मनुष्य तन के अंदर प्रवेश करना पड़ा, इसीलिए परकाया प्रवेश कहते हैं। तो अब हम सुनते हैं परमात्मा का अवतरण। इनका जन्म सिंध हैदराबाद में 1876 में एक साधारण परिवार में हुआ और इनका नाम लेखराज था, पर प्यार से लोग इनको दादा कहते थे, दादा लेखराज। और बचपन से ही इनके अंदर स्वभाव में मधुरता, वाणी में मिठास और चेहरे पर एक दिव्य अलौकिक तेज दिखता था, प्रभामंडल। और ये साधारण फैमिली को बिलोंग करते थे, मिडिल क्लास फैमिली। इनके जो पिता थे वो एक स्कूल के अंदर टीचर थे, और जब ये छोटे थे तभी इनकी माताजी ने शरीर छोड़ दिया था। बचपन से ही दादा के अंदर भक्ति के संस्कार कूट कूट कर भरे थे। ये श्री नारायण के भक्त थे और हमेशा अपने पॉकेट में श्री नारायण का चित्र रखते थे, और नियमित रूप से गीता का अध्ययन करना। इतना पक्का भक्ति का संस्कार था कि मानो ट्रेन में भी जा रहे होते थे तो गीता पढ़ना नहीं भूलते थे। और ये गृहस्थी थे, सन्यासी नहीं थे, मैरिड लाइफ थी, सब थे, इनके बच्चे आदि भी थे, माना गृहस्थी थे। और इनके अंदर बचपन से ही एक जिज्ञासा थी कि कहीं से मुझे सत्य ज्ञान मिल जाए, सत्य की खोज थी कि बस सत्य मुझे चाहिए। और उस सत्य को पाने के लिए कोई एक गुरु करता, कोई दो करता, पर दादा ने अपने जीवन में 12 गुरु किए, एक नहीं दो नहीं, एक से नहीं सेटिस्फाई दूसरा, पर खोज क्या थी कि बस सत्य मिले। और इतने भक्ति के संस्कार, गरीबों के प्रति दया, तीर्थादि पर जाना, दान पुण्य करना, अनेक यात्राएं इन्होंने की, कूट कूट कर भक्ति भावना भरी थी। अब जब दादा अपनी मिड एज में पहुंचे, यंग लाइफ में, तभी इनके पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया, तो दादा ने अपने काका के साथ एक अनाज की दुकान पर काम करना शुरू किया। परंतु धीरे धीरे व्यवहार कुशलता और चमत्कारिक बुद्धि होने के कारण दादा एक अनाज के व्यापारी से उठकर एक बहुत बड़े हीरे जवाहरात के लीडिंग बिजनेसमैन बन गए उस समय। और इतना इनका बिजनेस पॉपुलर हो गया कि उस समय इनका नेपाल के राजा, उदयपुर के राजाओं से संपर्क था। पर इतना बड़ा बिजनेसमैन बनने के बाद भी, सोचो आप, आज किसी के पास थोड़ा भी पैसा आ जाए तो अभिमान आ जाता है, पर इतना बड़ा बिजनेसमैन बनने के बाद भी दादा के अंदर वही रहम भावना, वही सात्विक जीवन, गरीबों के प्रति दया, तीर्थादि पर जाना, दान पुण्य करना, और जीवन बड़ा सात्विक था, जिसको कहते हैं ना हम सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, राजा महाराजाओं के साथ उठना बैठना, फिर भी सात्विक जीवन। राजा महाराजा इनके जीवन को देखकर कहते थे कि लखीराज बाबू, भगवान से भूल हो गई कि राजापन के संस्कार तो आप में हैं, राजा तो आपको बनाना था और हमको बना दिया। तो इस तरह का इनका जीवन था। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं सुनाते आपको, ऐसे तो बहुत डिटेल है, पर आप ये समझो कि इतने पॉपुलर ये थे उस समय के बिजनेसमैन, इतना इनका हीरे जवाहरात का बिजनेस पॉपुलर था कि आज भी इनके नाम से कलकत्ता में दुकानें चलती हैं, कि लखीराज बाबू की पुरानी दुकान। इनका बिजनेस सब दूर फैला था, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, सब तरफ। अब जब इनकी आयु 60 साल की हुई, अब हम आपको 1936 की बात सुनाते लगभग। जब इनकी आयु 60 साल की हुई तब इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि दादा अब हमने बहुत धन कमा लिया, बच्चे भी सेटल्ड हो गए, तो क्यों ना अब हम वानप्रस्थ हो जाएं? तो दादा ने कहा कि नहीं। दादा को भक्ति का शौक था, भक्ति करते थे, पर दादा ने वानप्रस्थ लेने की कभी नहीं सोची, क्योंकि इनको धन कमाने का भी बहुत शौक था। किसी का होता है ना बिजनेस से बहुत प्यार होता है, तो दादा ने कहा कि नहीं, अभी कुछ और बिजनेस कर लें, फिर बाद में वानप्रस्थ की सोचेंगे। पर कहते ना कि मनुष्य की चाहना कुछ और भगवान की चाहना कुछ और होती है। अब एक बार दादा बॉम्बे के अंदर बबुलनाथ के मंदिर के पास बैठे थे और दादा को अपने जीवन के अंदर उस समय एक साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का, और उसने कहा तत्त्वम, जो मैं हूं वो तुम हो। तो दादा बड़े खुश हो गए। दादा को लगा कि आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिल गया, स्वयं भगवान ने मुझे दर्शन दे दिए। तो दादा बड़े प्रसन्न हुए और दौड़े दौड़े गुरुजी के पास गए। दादा को लगा कि गुरु की कृपा से मुझे आज भगवान के दर्शन हुए, पर गुरु के हाव भाव को देखकर दादा समझ गए कि ये दर्शन मुझे इस गुरु की कृपा से नहीं हुए, ये तो स्वयं परम सतगुरु परमात्मा ने दर्शन करवाए हैं। तो उस दिन से लेकर दादा का ध्यान उस देहधारी गुरुओं की तरफ से हटकर उस परम सतगुरु की तरफ चला गया। अब उस साक्षात्कार के बाद दादा घंटों एकांत में रहते, बस मनन करते रहते, खोए खोए रहते। अब कुछ ही दिनों बाद एक दूसरा साक्षात्कार हुआ। कब की बात सुना रहे हैं आपको? 1936, उस समय की। क्या देखा दादा ने दूसरे साक्षात्कार में? इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का महाविनाश। आप देखिए, आज तो किसी को विनाश के बारे में कहो तो मान भी लेंगे, क्योंकि सरकमस्टांसेस ऐसे, पर उस समय तो सब ठीक ठाक था, विनाश आदि की इतनी चर्चा नहीं होती थी। पर फिर भी दादा ने उस समय ये साक्षात्कार में एक दृश्य देखा कि इस पुरानी दुनिया का विनाश, एटॉमिक वॉर, सिविल वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा होगा, कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, और सारी सृष्टि पर हाहाकार चलेगा, सब एक दूसरे को सहायता के लिए पुकारेंगे। तो इतना भयंकर महाविनाश का दृश्य देखकर दादा की आंख में आंसू आ गए और दादा ने कहा बस करो प्रभु, बस करो, इतना भयंकर महाविनाश मैं नहीं सहन कर सकता। फिर कुछ क्षणों के लिए दादा की आंख बंद हो गई। फिर कुछ ही क्षणों बाद दादा को तीसरा साक्षात्कार हुआ। कुछ ही क्षणों बाद दादा ने देखा कि ऊपर से बहुत छोटे छोटे सितारे आते और कोई सितारा देवी का रूप धारण कर लेता और कोई सितारा देवता का रूप धारण कर लेता। और एक बहुत सुंदर दुनिया दादा ने देखी जहां पर चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं, दुख का नाम ही नहीं। सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार दादा ने किया तो दादा बड़े खुश हो गए। फिर ऊपर से एक आवाज आई कि दादा, ऐसी सुंदर दुनिया, सुखमय संसार, सतयुगी दुनिया, खुशियों भरी दुनिया तुमको बनानी है। तो दादा बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि मैं एक साधारण मनुष्य एक समाज बदल सकता हूं, पर सारी की सारी दुनिया बदल देना, सतयुग बना देना, विश्व बदल देना, ये काम मैं कैसे करूंगा। पर क्या हुआ कि इन साक्षात्कार के बाद दादा का मन अपने बिजनेस में नहीं लगा। वो जो हीरे जवाहरात थे वो दादा को पत्थर दिखाई देने लगे। तो दादा ने अपने पार्टनर को कहा, बिजनेस पार्टनर जो था, कि भाई अब मेरा मन इस बिजनेस में नहीं लगता, जो भी मेरा हिसाब किताब है वो तुम करो, मैं तो अब भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। तो जो बिजनेस पार्टनर था उसने पूछा कि भाई मुझसे कोई भूल हुई क्या। तो दादा ने कहा कि नहीं, तुमसे नहीं भूल हुई, पर मुझे तो भगवान का पैगाम आया है कि मुझे यहाँ एक नई दुनिया बनानी है। तो उन्होंने अपना सारा बिजनेस सब तरफ से वाइंड अप किया, जहां जहां भी फैला था, और अपने घर पर एक टेलीग्राम किया। क्या दादा ने लिखा वो हम आपको सुनाते हैं। देखो, कुछ समय पहले दादा ने बिजनेस करने का शौक था और देखो कैसे सारा बिजनेस वाइंड अप करा। तो दादा ने अपने घर जो खत लिखा वो हम आपको वैसा का वैसे ही सुनाते, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। दादा ने लिखा, अलिफ को अल्लाह मिला, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आया तार अलिफ को हुआ रेल का राही। अर्थात आत्मा को परमात्मा मिला और बेमाना पार्टनर को ये झूठा हीरे जवाहरात का धंधा, और रेल का राही माना कि सारा बिजनेस वाइंड अप करके मैं ट्रेन से घर आ रहा हूं। पर घर वाले इस मैसेज को नहीं समझ पाए। पर जब सारा बिजनेस वाइंड अप करके दादा घर पहुंचे तो दादा का रहन सहन, जीवन सब बदला हुआ। दादा खोए खोए रहने लगे, एकांत में रहते, मनन करते ज्ञान का। तो घर वाले इस परिवर्तन को नहीं समझ पाए कि आखिर क्या हुआ। अब क्या था, कब की बात सुना रहे हैं आपको, 1937-36 की अराउंड, कि जब दादा की आयु, अभी तक हमने जो बात सुनाई वो आप कहेंगे कि वो तो दादा के जीवन से संबंधित है, दादा को साक्षात्कार हुए हम क्या करें। पर अब हम आपको जो बात सुना रहे हैं उसका संबंध केवल दादा के जीवन से नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति से संबंधित रखता है। तो अब आप सुने कि इस विशाल रंगमंच पर, इस ड्रामा के अंदर कौन सी सत्य घटना घटित हुई जिसका संबंध सारी मानव जाति से है। अब क्या हुआ, जब दादा की आयु 60 साल की हो गई तो दादा अपना बिजनेस वाइंड अप करके घर पहुंचे तो एक दिन दादा के घर में शाम के समय गुरुजी का सत्संग रखा था और सभी जो शहर वाले थे उनको निमंत्रण दिया था। तो उस दिन दादा गुरु के सत्संग को छोड़कर अपने कमरे में चले गए अंदर। घर में रखा था सत्संग, तो दादा की बहू धर्मपत्नी सब इनके पीछे पीछे गए देखने कि दादा गुरु के सत्संग के बीच में से क्यों उठ गए, इनको क्या हुआ। तो दादा की बहू सुनाती है, कुछ साल पहले थी इनकी बहू, अभी इन्होंने शरीर छोड़ा, क्या सुनाती है कि जब वो दादा को देखने पहुंची तो क्या पाया कि जो पूरा कमरा था वो एक सुनहरा एक लाल प्रकाश से जगमगा रहा था, और उस प्रकाश के अंदर एक अलौकिक शक्ति थी और एक असीम शांति थी। और सुनाया कि दादा के चेहरा इतना तेज लाल, एक प्रकाश एक शक्ति, और इतने दो नैन तेज जगमग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि मानो नैन नहीं पर दो बल्ब जगमगा रहे हो, इतना प्रकाश। और फिर इतने में से दादा के मुख से एक आवाज आई, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और बस इतनी आवाज आते ही कुछ क्षणों के लिए दादा की आंख बंद हो गई। फिर उनकी बहू ने पूछा कि दादा ये आपके मुख से कौन बोल रहा था, ये आपकी आवाज नहीं थी। तो दादा को समझ नहीं पाए कि कौन बोल रहा था, बस दादा ने इतना कहा कि वो एक लाइट थी, वो एक माइट थी, वो एक प्रकाश था, वो एक शक्ति थी, बस इतना ही समझ पाए दादा। पर क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन बोल रहा था, आगे चल के सबको मालूम पड़ा, पर क्या अभी आप बता सकते हैं कौन बोल रहा था। वो था इस सृष्टि रंगमंच पर प्रथम दिन जब स्वयं सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु परम पिता शिव बाबा ने उस साधारण तन के अंदर प्रवेश किया। परमात्मा ने सबसे पहली बार इस धरती पर साकार मनुष्य के तन में प्रवेश किया। पर ये आगे चल के मालूम पड़ा, कैसे मालूम पड़ा वो आपको सुनाते। पर उस समय तो दादा ने इतने ही कहा कि वो एक लाइट थी, वो एक माइट थी, वो एक लाइट थी, वो एक माइट थी। अब क्या होता कि रोज ऐसे ही परम धाम से वो महाज्योति शिव बाबा दादा के तन में प्रवेश करते, कुछ महावाक्य उच्चारण करते और फिर चले जाते। पर उस महावाक्य के अंदर इतनी शक्ति थी क्योंकि वो डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य थे, तो इतनी शक्ति थी कि उस महावाक्य का एक एक शब्द आत्माओं के जन्म जन्म के दुख दूर कर देता था। इतनी शक्ति कि एक एक महावाक्य आत्माओं को इसने खुशी प्यार शक्ति की अनुभूति कराता, और इतना उसमें आकर्षण था महावाक्य में कि लोग अपना सब कामकाज छोड़ के उस महावाक्य को सुनने आ जाते थे, और हम लोग उस महावाक्य को आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं मुरली। जैसे सुनाते ना कि श्री कृष्ण ने जब मुरली बजाई तो गोप गोपियां अपना सारा काम छोड़कर उस मुरली में ही मस्ताने हो जाते थे, तो इतना बाबा के महावाक्य में शक्ति थी कि आत्माएं सुनने वाली एक अलग प्रकार के सुख का अनुभव करती थी। और उस मुरली के अंदर बाबा ने कई महीनों तक आत्मा के बारे में ज्ञान दिया, कई महीनों तक परमात्मा के बारे में ज्ञान दिया। तो जब परमात्मा के बारे में ज्ञान दिया, तब लोगों को समझ में आया कि दादा के मुख से बोलने वाला स्वयं परम पिता शिव परमात्मा है। तब तक लोगों को समझता था कि भाई इनको कोई दर्शन हुए, पर डायरेक्ट परमात्मा सुना रहे ये तब मालूम पड़ा। आप लोग पूछ रहे थे ना कि भाई 2 तारीख के बाद क्या है, तो 2 तारीख के बाद भी आप लोगों का 15 डेज का एडवांस कोर्स चलेगा, और उस कोर्स के अंदर आपको हम परमात्मा के महावाक्य मुरली सुनाएंगे। मुरली सुनना जीवन में क्यों जरूरी है, क्या उसका महत्व, ये आपको आगे चल के बताएंगे, ये कल बताएंगे हम आपको। पर हाँ इतना बताते कि परसों से, क्योंकि मेजॉरिटी सभी का प्रश्न था कि बहन जी अच्छा तो लगा, पर अब ये परिवर्तन स्थायी रूप से जीवन में आ जाए तो उसके लिए क्या करें। तो ये बेसिक कोर्स चल रहा था, पर अब ये परिवर्तन जड़ों में आ जाए, आपकी जड़ से आप ठीक हो जाए, ऊपर ऊपर नहीं, मन हिले आपका, अभी तक ऐसा लगा अच्छा अच्छा, तो जड़ से परिवर्तन हो, तो उसके लिए 15 डेज का एडवांस कोर्स मुरली का, वो आपका परसों से शुरू होगा। क्यों मुरली सुनना, क्या है उसका महत्व, कैसे मुरली से शारीरिक स्वास्थ्य आदि सब ठीक होता, वो कल हम बताएंगे। पर इतना आज बताते कि परसों से आप सभी का एडवांस कोर्स 15, तो अनुभव करेंगे कि कैसे मुरली का एक एक शब्द आत्मा के अंदर जड़ से संस्कार परिवर्तन करेगा। कैसे एक एक शब्द, जैसे अभी आपको एक स्पिरिचुअल इंजेक्शन देते हैं तो शक्ति मिलती है ना, तो मुरली तो सारे स्पिरिचुअल इंजेक्शन है। आप मुरली सुनते जाओगे और आपको लगेगा जैसे नहीं ग्लूकोज की बॉटल चढ़ती, तो एक एक शब्द मुरली का आत्मा में शक्ति भरता जाएगा। कैसे सुनना, क्या विधि, वो सब कल का सेशन। पर मुरली माना, ऐसा नहीं समझना कि परसों से कोई क्या मुरली बजेगी यहाँ। महावाक्य को हम कहते मुरली माना परमात्मा के महावाक्य, तो आपको परमात्मा के महावाक्य सुनाए जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आपको वही कंटिन्यू करते कि ऐसे रोज शिव बाबा आते परम धाम से और दादा के मुख से कुछ महावाक्य उच्चारण करते और फिर चले जाते। तो उस महावाक्य से लोगों के जीवन में परिवर्तन बहुत आया। तो जो शहर के बड़े थे मुखिया लोग, उन्होंने दादा को एक राय दी कि दादा आपके यहाँ इतना सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान चल रहा है, तो क्यों ना आप एक हॉस्टल खोल दो, और जिसमें छोटे छोटे बच्चों को रखना, ये आध्यात्मिक शिक्षा भी देना और लौकिक जगत की भी शिक्षा देना। तो दादा ने ऐसे ही किया, एक हॉस्टल खोल दिया, पर उस हॉस्टल को हॉस्टल नाम नहीं दिया, उसको नाम दिया कि ये शिव बाबा का रचा हुआ यज्ञ है, परिवार है। और सचमुच में उस हॉस्टल में उस समय लगभग 300 के लगभग छोटे बच्चे आए थे, कोई 8 साल, कोई 9 साल, कोई 10, कोई 12, इससे बड़ा नहीं, पूरे भारत से 300 के लगभग बच्चे आए थे। आज भी वो बच्चे हैं, सब बड़े हो गए, कोई 70, कोई 80 साल, आज हम उनको इन संस्था की दादियां कहते हैं। तो 300 के लगभग जो बच्चे थे, उनको परिवार जैसी दादा ने पालना दी, हॉस्टल नाम नहीं, सचमुच प्रभु का यज्ञ है, परिवार है, ऐसी पालना दी। अब शिव बाबा रोज दादा के तन में आते, कुछ महावाक्य उच्चारण करते और कई राज बाबा ने बताए, पर हम आपको मुख्य 2 राज बताते, आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा अनेक। सबसे पहले शिव बाबा ने कहा कि मैं इस दादा लेखराज को आज से ब्रह्मा नाम देता हूं। ब्रह्मा क्यों? क्योंकि बताते हैं कि ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, क्रिएटर। तो शिव बाबा ने कहा कि मैं यहां पर एक नई सतयुगी दुनिया की रचना, नई सुखमय संसार की रचना इस मनुष्य तन में प्रवेश कर करूंगा, इसको अपना आधार बनाता हूं, इसलिए नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। दूसरा बाबा ने रहस्य खोला कि वो जो यज्ञ रचा था परिवार जिसमें सब छोटे छोटे बच्चे थे, तो उसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तब से लेकर ये नाम चल रहा है। कई भाई बहनों ने पूछा था कि बहन जी इसको ब्रह्मा कुमारी क्यों कहते, ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों? इसलिए आपको शॉर्ट में अभी आज सब बताते। तो क्यों ईश्वरीय विश्वविद्यालय? विश्वविद्यालय माना जो सारे विश्व की आत्माओं के लिए ओपन, सब आकर इसमें शिक्षा ले सकते हैं। न धर्म, न जाति, न रंग, कोई भेद नहीं, न गरीब न अमीर, क्योंकि आत्मिक रूप से सब उस परमपिता परमात्मा की संतान है। तो सब धर्म की आत्माएं आकर इसमें शिक्षा लेती हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों? ईश्वरीय इसलिए कहा कि जहां डायरेक्ट ईश्वर आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं। और ब्रह्मा कुमारी इसलिए कि कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारी माना कोई बहनों की संस्था है, बहनें जा सकती, ऐसा नहीं। ब्रह्मा कुमारी इसलिए कि जो ब्रह्मा के बच्चे हैं, जो भाई लोग हैं उनको हम कहते ब्रह्मा कुमार, और जो बहनें उनको बोलते ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमारी। तो सब इसमें आते हैं, ऐसा नहीं कि बहनें ही आती हैं भाई नहीं आते, नहीं, क्योंकि आत्मिक रूप से तो सब एक ही पिता की संतान। पर क्यों ब्रह्मा कुमारी नाम दिया? कि शिव बाबा ने ज्ञान सुनाने का कलश माताओं बहनों को सिर पे दिया। क्यों? क्योंकि माताओं को प्रथम गुरु कहा जाता है ना। वैसे भी देखो शिक्षा देने का काम माता करती है, तो इसलिए बाबा ने ब्रह्मा कुमारी नाम दिया। पर आते सब इसके अंदर, तो तब से लेकर ये नाम चल रहा है। और अब हम आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं सुनाते, ऐसे तो बहुत मोटी मोटी बुक्स बनी है, आप चाहें तो विस्तार से पढ़ सकते हैं, पर हम आपको एकदम नटशेल में आज बताते कि रोज ऐसा चलता, शिव बाबा आते, कुछ महावाक्य उच्चारण करते और फिर चले जाते। अब उस यज्ञ में क्या चलता था? उस समय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ऐसे सेवा केंद्र नहीं खुले थे, जगह जगह सेवा नहीं होती थी। उस समय केवल बाबा ने उन बच्चों से 14 साल तपस्या कराई। केवल तपस्या, शिव बाबा को याद करना, यही काम था। उस यज्ञ की क्या दिनचर्या थी, क्या रूटीन था, वो हम आपको बताते। पर उस यज्ञ के अंदर जो बच्चे रहते थे वो प्यार से इनको ब्रह्मा बाबा कहते थे। क्यों? क्योंकि देखो, एक हुआ लौकिक पिता जिसने शरीर को जन्म दिया, दूसरा आत्मा का पिता पारलौकिक पिता शिव बाबा, तीसरा यज्ञ का पिता अलौकिक पिता जो उनकी पालना के निमित्त था वो यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा। बाबा माना पिता, आपको पहले ही बताया। तो सब बच्चे प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते थे, और केवल कहने मात्र नहीं, हमको दादियां सुनाती हैं कि सचमुच जब से शिव बाबा ने प्रवेशता की ब्रह्मा बाबा के अंदर, बाबा के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन शुरू हुआ, और सचमुच ब्रह्मा बाबा ने मात पिता बनकर उन बच्चों की पालना की। दादियां सुनाती हैं कि राजकुमार राजकुमारियों की भी ऐसी पालना नहीं हो सकती। इतने स्नेह से बाबा ने पालना की। अब हम आपको उस यज्ञ के अंदर क्या रूटीन था, क्या दिनचर्या थी सुनाते। सब छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 8 साल, कोई 9, कोई 10, कोई 12, बस इससे बड़ा नहीं। कि सभी बच्चे रोज सुबह 3:30 बजे उठ जाया करते थे और उठकर बाबा को याद करते थे, शिव बाबा को याद करते, मेडिटेशन करते 4:45 तक। उसके बाद जो भी उनका नित्य कर्म, स्नान आदि सब करके सब बच्चे बाबा की मुरली सुनते थे, बाबा उनको मुरली सुनाते थे महावाक्य। फिर उसके बाद सब बच्चे ब्रह्मा बाबा के साथ सैर पर जाते थे, जिसको आजकल की लैंग्वेज में हम कहते हैं मॉर्निंग वॉक। और सबकी ड्रेस व्हाइट होती थी, बाबा ने व्हाइट ड्रेस सबकी बनाई थी, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ना। अब आप सोचो कि जब 300 के लगभग बच्चे व्हाइट ड्रेस में जाते थे तो ऐसा लगता था शहर वालों को जैसे कोई हंसों की टोली जा रही हो, फरिश्ते जा रहे हो। फिर सब बच्चे सैर करके आते और उसके बाद यज्ञ का जो भी स्थूल काम होता वो करते, क्योंकि बाबा की ये शिक्षा थी कि बच्चे ये शिव बाबा का रचा यज्ञ है, तो इसका सभी काम बच्चों को ही अपने हाथ से करना है। बाबा उन बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। केवल तपस्या करके आत्मिक शक्ति नहीं बढ़ाना था, पर बाबा ने उन बच्चों का संपूर्ण विकास किया। तो सब बच्चे अपने हाथ से सारा काम करते थे। आप सोचो कि आज एक परिवार में 8-10 लोग भी रहते हैं तो कितना काम होता है। तो वहां 300 के लगभग भाई बहन रहते थे। तो सारा काम बाबा ने हाथ से सिखाया, साफ सफाई करना, भोजन बनाना, सब काम। पर उस काम को वो काम नहीं कहते थे, वो कहते थे कि ये तो परमात्मा ने यज्ञ रचा है, तो उस यज्ञ की हम सेवा कर रहे हैं। सेवा समझकर खुशी खुशी करते थे। तो ऑलराउंड ट्रेनिंग बाबा ने सब बच्चों को दी। और यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा थे, तो हर कर्म को बाबा ने खुद करके सिखाया। अब हम आपको सुनाते कि बाबा के जीवन में शिव बाबा की प्रवेशता के बाद क्या क्या गुण विशेषताएं आई। वैसे बाबा का जीवन आपको सुनाया कितना सात्विक था पहले, गरीबों के प्रति सब दया दान पुण्य करना। पर जिस दिन से शिव बाबा ने प्रवेश किया तो सबसे पहली विशेषता बाबा के अंदर आई ब्रह्मा बाबा में, आत्मिक दृष्टि की धुन। जिस दिन से शिव बाबा ने प्रवेश किया, बाबा की दृष्टि सबके प्रति आत्मिक हो गई। बाबा ने न जाति देखा, न धर्म देखा, न रंग देखा, न रूप। सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग कि सब आत्माएं हैं। आप सोचो अंदर में वृत्ति बदल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। दादियां हमको सुनाती कि बाबा ने दीवालों पर लिख लिख कर आत्मिक दृष्टि का अभ्यास पक्का किया। और न केवल अभ्यास किया, पर बाबा ने सबको आत्मिक रूप से व्यवहार किया। तो जब बाबा की दृष्टि सबके प्रति आत्मिक हो गई, बाबा को लगा कि सब हमारे हैं, अपने हैं, तो देखने वालों को भी लगा कि केवल शिव बाबा ही हमारा बाबा नहीं है, पर ब्रह्मा भी हमारा बाबा है, जिसको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, कहते हैं ना। तो ये परिवर्तन बाबा के जीवन में आया। दूसरा, संपूर्ण समर्पणता। जिस दिन से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा ने अपना तन, मन, धन, समय, संकल्प, सब कुछ यज्ञ के अंदर समर्पित कर दिया। संपूर्ण समर्पण, धन भी बहुत था उस समय, उसी धन से तो पालना हुई बच्चों की, क्योंकि बाबा हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे। तीसरी विशेषता दादियां सुनाती हैं कि बाबा हर कर्म करते हुए शिव बाबा को याद करो, यही शिक्षा देते थे। बाबा के अंदर मैंपन कभी नहीं आया, कभी भी बाबा को इतना सा अहंकार भी नहीं आया कि मैंने यज्ञ रचा, नहीं। हमेशा कूट कूट कर ये पाठ पक्का कराया कि शिव बाबा ने यज्ञ रचा है सतयुगी दुनिया की स्थापना के लिए, मैं तो केवल निमित्त हूँ। हमेशा बाबा यही शिक्षा देते थे कि शिव बाबा को याद करो। दादियां सुनाती है कि जब भोजन बना रहे होते थे तब भी बाबा आकर पूछते थे कि बच्चे किसकी याद में भोजन बना रहे हो, किसके यज्ञ किसे बना रहे हो, किसके यज्ञ से तुम्हारी पालना हो रही है। तो इतना निमित्त और निर्माण भाव। कभी भी ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं कहा मुझे याद करो, हमेशा कहा कि मैं तो निमित्त हूँ, यज्ञ को संभालने के लिए निमित्त हूँ। यज्ञ रचा किसने है, शिव बाबा ने, तो उसी को याद करना। और निश्चय बहुत था बाबा का, संपूर्ण निश्चय बुद्धि। आप देखिए कि आज कोई छोटा मोटा काम भी करते ना तो बहुत विघ्न आ जाते हैं, कई परीक्षाएं आती हैं। तो बाबा तो इतना बड़ा स्थापना का काम लेकर चले थे, तो इस मार्ग में भी कई परीक्षाएं आई, पर बाबा का निश्चय अडोल था। कहते ही ना कि सत्य की नाव हिलती डुलती है लेकिन डूब नहीं सकती। तो कई परीक्षाएं आई, पर बाबा को ये निश्चय था, एक बल था, एक भरोसा कि शिव बाबा का यज्ञ रचाए तो इसका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। तो इस तरह बाबा का जीवन बना और बाबा ने सभी बच्चों को 14 साल तपस्या कराई, खुद भी तपस्या की और बच्चों को भी कराई। और उसके बाद लगभग 1953 सभी बच्चे बाबा के साथ माउंट आबू में शिफ्ट हुए। हेडक्वार्टर इस संस्था का माउंट आबू राजस्थान में शिफ्ट हुआ, सिंध हैदराबाद से। और तब से लेकर आज तक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो माउंट आबू राजस्थान में है। कईयों ने देखा भी होगा, गए भी होंगे, आपके यहाँ से तो नजदीक है। कौन कौन गए देखा है, जरा हाथ उठाओ, मालूम पड़ेगा। अरे ये तो मेजोरिटी, ओहो क्या बात है, आप सभी ने मुख्यालय देखा है माना, चलो सभी परिचित है माना, मोस्टली सभी। तो तब से लेकर वहीं पर ये मुख्यालय हुए हैं। तो ऐसे 14 साल की तपस्या के बाद जब सब माउंट आबू शिफ्ट हुए तो सबके अंदर तपस्या की शक्ति, तपस्या का बल जमा हो गया था। तब तक सेवा नहीं चलती थी, केवल बाबा को याद करना। पर जब तपस्या के बाद सब पक गए तो फिर बाबा ने, शिव बाबा ने सबको आदेश दिया कि जाओ बच्चे, अब जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाओ। जो खुशी, जो प्यार, जो शक्ति तुम्हें अपने जीवन में मिली है उसको सब आत्माओं तक दो। बाबा ने कहा कि सब जन जन तक ये पैगाम पहुंचाओ कि प्रभु पिता का अवतरण इस धरती पर हो चुका है, ताकि कोई भी आत्मा ये न कहे कि हे प्रभु पिता, आप इस धरती पर आए, आपने इतना सुंदर यज्ञ रचा, इतना बढ़िया ज्ञान दिया और आपने हमको निमंत्रण तक नहीं दिया। तो ऐसी सेवाओं का लक्ष्य था कि वो खुशी, वो शक्ति, वो ज्ञान जन जन तक फैलाना। तो उसके बाद कई स्थानों पर सेवा केंद्र खुले। सबसे पहला सेवा केंद्र इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का दिल्ली में खुला, दिल्ली कमला नगर। और उसके बाद तो कानपुर, मेरठ, लखनऊ, सब दूरीय जगह जगह सेवा केंद्र खुलते गए। वर्तमान समय क्या रूप है आपको बताएंगे, पर इस तरह सेवाएं बाबा की बढ़ती गई और यही लक्ष्य था कि सब आत्माओं के जीवन का सुख शांति पहुंचाना, जो ज्ञान परमात्मा सुना रहा है उस ज्ञान को सभी को सुनाना, जो परमात्मा पिता ने यज्ञ रचा ये खुशखबरी सभी को सुनाना। तो ये लक्ष्य था। ऐसे जगह जगह सेवा बढ़ती गई। अब हम आपको 18 जनवरी 1969 की बात सुनाते। बाबा के शरीर छोड़ने के एक साल पहले की बात। तब तक ऐसी रूटीन बहुत विस्तार है। ऐसे तो बाबा के जीवन का शुरू से लक्ष्य था कि जिस दिन से शिव बाबा ने प्रवेश किया था कि मुझे तपस्या करके शिव बाबा के समान बनना है। शिव बाबा नहीं बनना, पर शिव बाबा के समान बनना है। तो दादियां सुनाती हैं कि बाबा रात को 2-2 बजे उठकर तपस्या करते थे। इतनी गहन तपस्या। और बाबा ने अपने अंतिम दिनों में तो और गहरी तपस्या की। बाबा साइलेंस में जा रहे थे। बताते हैं कि इतने डीप साइलेंस में बाबा जा रहे थे कि बाबा के कमरे में घड़ी लगी थी, वो टिक टिक की आवाज करती थी, तो वो भी बाबा को नहीं पसंद। माना इतनी साइलेंस। तो आप देखो कि कैसे ये साधारण मनुष्य के अंदर परमात्मा का जब प्रवेशता हुई तो कैसे इसमें परिवर्तन आया, कैसे इन्होंने अपना तन मन धन सब समर्पित किया, किस तरह से तपस्या की, यज्ञ रचा और बच्चों की पालना की, और किस तरह से इनके जीवन में परिवर्तन आया। तो 33 साल 1936-37 से 69 तक 33 साल रोज शिव बाबा आते और ब्रह्मा बाबा के मुख से महावाक्य उच्चारण करते और चले जाते। अब आप सोचो 33 साल में बाबा ने क्या क्या नहीं सुनाया होगा, कितने गहरे रहस्य। पर 18 जनवरी 1969 का दिन था कि पूरे टोटल यज्ञ के इतिहास के अंदर 33 साल में वो पहला दिन था कि जब शिव बाबा की प्रवेशता बाबा के तन में नहीं हुई, क्योंकि बाबा का श्वास, ब्रह्मा बाबा का श्वास कुछ ठीक नहीं था। फिर भी सुबह के समय शिव बाबा नहीं आए, शाम के समय बाबा ने प्रवेश किया और 3 शिक्षाएं जो बाबा ने दी लास्ट की ब्रह्मा बाबा के मुख से, वो बाबा ने कहा कि बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरअहंकारी बनो। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, बस इतना कहते बाबा ने कहा बच्चे विदाई। पर बच्चे नहीं समझ पाए। अच्छा, तब तक तो बच्चे भी बहुत थे, जगह जगह सेवा केंद्र खुल गए थे, तो सभी बच्चे बाबा के याद थे। पर बच्चे नहीं समझ पाए कि बाबा ने विदाई शब्द क्यों कहा। पर इतना कहकर बाबा अपने रूम में आ गए। तो जो हमारी संस्था की बड़ी दादियां हैं वो भी बाबा के पास आई, क्योंकि बाबा का स्वास्थ्य उस दिन कुछ ठीक नहीं था। तो दादियों ने बाबा को कहा कि बाबा आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम डॉक्टर को बुलाएं। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, मुझे कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, मैं तो सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा हूं। पर जब बाबा ने जो हमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका बड़ी दादी जी हैं, आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, उनके हाथ में हाथ दिया और सारा यज्ञ का कारोबार, अपनी शक्तियां सब दादी को अर्पण की और बाबा इस पुराने शरीर को छोड़कर संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुए। और जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो 3 बातें बाबा के मन में थीं। पहला, एक तो जो इतने सारे जगह जगह सेवा केंद्र पर बच्चे थे तो उन सबका शुद्ध स्नेह बाबा को याद आ रहा था। दूसरा, शरीर का कर्म भोग का अंतिम हिसाब किताब भी बाबा को अपनी तरफ खींच रहा था। तीसरा, आत्मा एकदम प्योर बन गई थी तो शिव बाबा भी उसको अपनी तरफ खींच रहा था, पर अंत में कर्म भोग पर कर्म योग की विजय हुई और बाबा अपना इस पुराने शरीर को छोड़कर संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुए। तो जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो बच्चों के मन में कोई भी हलचल नहीं थी, क्योंकि बच्चों को तो शुरू से ये कूट कूट कर पाठ पक्का कराया था कि ब्रह्मा बाबा तो निमित्त हैं, यज्ञ शिव बाबा का है और परमात्मा का यज्ञ तो सदा ही चलता रहेगा जब तक सतयुगी दुनिया की स्थापना नहीं हो जाती जिस लक्ष्य से यज्ञ रचा था। तो बच्चों को तो पाठ पक्का था, बच्चों के मन में कोई संशय नहीं, बस हाँ एक बात जरूर थी, उनको था कि अभी रोज शिव बाबा की मुरली महावाक्य हम ब्रह्मा बाबा के मुख से सुनते थे, अब बाबा हमको कैसे सुनाएंगे, किसके तन का आधार लेंगे, कैसे हमारी माता पिता बनकर पालना करेंगे। बाकी बाहर वालों के मन में था, उनको था कि ये तो इस संस्था के गुरु हैं तो गुरु चले गए, पर ये गुरु नहीं थे, ये तो बाबा थे, इनको तो निमित्त बनाया था पालना के लिए, बाकी यज्ञ शिव बाबा ने रचा और शिव बाबा ही इसको चला रहे थे, पर निमित्त किसी को माध्यम बनाना पड़ा। तो बच्चों के मन में जरूर ये प्रश्न था कि अब हम कैसे शिव बाबा से मिलेंगे, कैसे हमारी पालना होगी। तो क्या हुआ कि बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार करने के बाद हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी शिव बाबा को भोग लगाने बैठे, और नॉर्मल भोग रोज 15-20 मिनट में पूरा हो जाता था, पर उस दिन आधा घंटे तक भोग लगा, माना दादी ने आंख नहीं खोली। फिर आधा घंटे बाद दादी के मुख से एक विस्परिंग साउंड आया, ऐसी आवाज नहीं जैसे हम लोग बात करते, एक विस्परिंग साउंड, सूक्ष्म आवाज, तो वो था दादी के तन में शिव बाबा की प्रवेशता। तो फिर बाबा ने कई बात बच्चों से की और बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तक मैंने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया, बाबा के तन में आकर आप लोगों की पालना की मुरली सुनाई, और आज से गुलजार दादी के माध्यम को मैं लेता हूँ और उनके तन में प्रवेश कर ज्ञान सुनाऊंगा, मुरली आदि सब सुनाऊंगा। तो 1969 तक शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना आधार बनाया। ब्रह्मा बाबा की एज 93 इयर्स थी जब शरीर छोड़ा, और 1969 से लेकर आज तक की डेट तक शिव बाबा आते हैं, महावाक्य उच्चारण करते हैं, बच्चों से मिलन मनाते हैं, पर केवल माध्यम बदला, इंस्ट्रूमेंट बदला। तो ये आपको शॉर्ट में सुनाया कि किस तरह परमात्मा ने ये यज्ञ रचा। वर्तमान रूप सेवा का इस तरह से कि हेडक्वार्टर माउंट आबू में है, जो मुख्य प्रशासिकाएं आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, और अभी इंटरनेशनल लेवल की संस्थाएं यूएनओ यूएन से भी एफिलिएटेड है, देश विदेश के अंदर 90 देशों के अंदर 8,000 से भी ज्यादा इसके सेवा केंद्र हैं, और सभी सेवाओं का लक्ष्य यही है कि हर आत्मा के जीवन को खुशी शांति शक्ति से भरपूर करना, हर आत्मा को परमात्मा के आने की खुशखबरी सुनाना, ताकि कोई भी आत्मा परमात्मा के ज्ञान से स्नेह से वंचित ना रहे। तो ये आपको शॉर्ट में सुनाया कि किस तरह से परमात्मा ने यज्ञ रचा। अब आप सब पूरा इम्पोर्टेंट है, जो कहते हैं ना जिस्ट है, इसलिए सभी ध्यान से सुनना, फुल अटेंशन से, कि देखिए कहते हैं कि जब भी कोई विपदा आती है तो यज्ञ रचा जाता है, रचते हैं ना यज्ञ। तो सारी सृष्टि की आत्माओं पर विपदा आ गई इस समय। क्या विपदा? कि सब दुख अशांति तनाव में जी रहे हैं। तो सारी सृष्टि की आत्माओं की विपदा को दूर करने के लिए जो सबसे बड़ा परमात्मा है उसने यज्ञ रचा, ये यज्ञ। और इस यज्ञ के द्वारा परमात्मा सब मनुष्य आत्माओं की दुख अशांति को दूर कर रहा है, सबको गति सदगति दे रहा है। तो ये आपको बताया कि कैसे परमात्मा ने सबको सुख शांति देने के लिए यज्ञ रचा। परंतु परमात्मा का स्वरूप तो आपको बताया कि वो तो ज्योति बिंदु है, तो वो बिंदु स्वरूप काम कैसे करे? कोई ना कोई आधार तो चाहिए ना। तो इसलिए परमात्मा शिव बाबा ने साकार मनुष्य तन को अपना माध्यम बनाया कि ये केवल इंस्ट्रूमेंट है, बाकी सारा काम किसने किया? शिव बाबा ने। इनको केवल निमित्त बनाया, माध्यम बनाया कि इस तन में प्रवेश होकर यज्ञ की स्थापना करना आदि आदि सब काम। तो आप सबको भी आज प्रभु के रचे यज्ञ की, प्रभु के रचे परिवार का परिचय दिया कि कैसे परमात्मा ने ये परिवार रचा। तो इसीलिए हम कहते कि ये संस्था नहीं है, ये प्रभु का रचा हुआ यज्ञ है, प्रभु का परिवार है, कि कैसे परमात्मा ने इस परिवार को रचा। तो आपको भी इस परिवार का परिचय मिला, तो आज से आप सब आत्माएं भी इस प्रभु के यज्ञ की, प्रभु के परिवार की क्या बन गए? क्या बन गए? सदस्य नहीं, बालक। परिवार में क्या होता है? बालक। तो अभी तक परिचय नहीं था, पर अब आपको परिचय मिला कि प्रभु ने परिवार रचा, किसको माध्यम बनाया, कैसे बनाया। ये बहुत शॉर्ट में 1% आपको सुनाया, 99% तो बाकी है। इतना डिटेल कैसे सुनाएंगे? अभी बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, पर ये खुशखबरी सुनाई। तो आप सबका भी आज नया जन्म, प्रभु के परिवार में जन्म हुआ। तो आप सबके भी कितने पिता हो गए? एक लौकिक पिता जिसने शरीर को जन्म दिया, दूसरा पारलौकिक पिता शिव बाबा आत्मा का पिता, और तीसरा यज्ञ का पिता, अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा। तो उसका आपको आज हमने परिचय दिया। तो आप सबका भी आज प्रभु के परिवार में जन्म हुआ। आप सभी ध्यान से सुनना, इधर उधर कोई नहीं देखे और कोई बीच में उठे भी नहीं, क्योंकि मक्खन चलेगा अभी, ठीक है ना? तो देखिए, कहते हैं कि जिसका जन्म बहुत ऊंचे कुल में होता है तो वो कितना अपने को भाग्यवान समझता है कि राज परिवार में मेरा जन्म हुआ। तो आप सबका जन्म राज परिवार में नहीं, पर उससे भी ऊंचे कुल में, जो सबसे ऊंचा कुल है प्रभु का कुल, तो उस ऊंचे से ऊंचे कुल में आज आप भाग्यवान आत्माओं का नया जन्म हुआ। तो प्रभु की गोद में, प्रभु के परिवार में आप सबका नया जन्म हुआ। तो आप सबको इस नए जन्म पर बहुत बहुत बधाई। तालियां तो बजा दो, नया जन्म हुआ तो जोर से बजाओ नए जन्म की। तो आज से आप देखो वैसे भी कि किसी को जन्मते ही गुरु की गोद मिल जाती है तो कितना भाग्यवान होता है। तो आपका तो जन्म ही प्रभु की गोद में हुआ, जन्म ही प्रभु के परिवार में हुआ, तो कितने नहीं भाग्यवान आप सब। तो आज से अब ये नहीं कहना कि बहन जी बहुत तनाव है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत चिंता है, ये सब पुराने जीवन की बातें। तनाव डिप्रेशन ये सब था, पर अब नया जीवन हुआ, नया जन्म हुआ, तो यही याद रखो कि मैं भगवान का हूँ और भाग्यवान हूं। मुझ जैसा भाग्यवान कोई और नहीं। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, समस्या, ये सब पुराने जीवन की बातें थी, ये सब कल तक थी। आज से जीवन बदल गया, नया जन्म हुआ, तो यही याद रखो कि आज से मेरा नया जन्म, प्रभु की गोद में जन्म हुआ। तो आज से तो मैं प्रभु के वरदानों के नीचे हूँ। आज से सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार ही है। आज से हर कदम पर हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। मैं खुशी के खजाने से भरपूर हूँ, भगवान का हूँ और भाग्यवान हूँ। क्यों भाग्यवान, अब आप बताओ, ये हम नहीं बताएंगे। आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन है, आप नोट कर लें, क्योंकि आज के प्रिंट नहीं करवाए हैं। आज सारा दिन आपको अपने भाग्य की खुशी में रहना, स्पिरिचुअल इंजेक्शन लिख लें। मैं भगवान का हूँ, भाग्यवान हूँ। क्या याद रखें, मैं भगवान का हूँ और भाग्यवान हूँ। मुझ जैसा भाग्यवान कोई और नहीं। सारा दिन आज इसी स्मृति में रहना, मैं भगवान का हूँ, भाग्यवान हूँ, मुझ जैसा भाग्यवान कोई और नहीं। अब क्यों भाग्यवान, ये आप बताएं, ये हम आज नहीं बताएंगे, आपको बताना है क्यों भाग्यवान। लिस्ट निकालो, बताइए, एक एक हाथ ऊंचा करके बताते जाओ, क्यों भाग्यवान। हाजी, अच्छा, इसलिए भाग्यवान कि प्रभु के घर में, प्रभु की गोद में हमारा नया जीवन, नया जन्म हुआ। और क्यों भाग्यवान बताओ, क्यों भाग्यवान, बताइए बताइए, क्यों भाग्यवान। हाँ हाँ बताइए, हाँ, इसलिए भाग्यवान, ये बिल्कुल राइट कहा कि देखो इस शहर के अंदर कितनी सारी आत्माएं होंगी, लाख तो होंगे, तो इन आत्माओं में से भी भगवान की नजर किस पर पड़ी, आप मुट्ठी भर यहां जो बैठे हो, तो करोड़ों में से भी कोई, सृष्टि में तो करोड़ों आत्माएं हैं, तो उन करोड़ों में से भी कोई और उन कोई में से भी कोई भगवान की नजर आप पर पड़ी। भगवान ने आपको पसंद किया, परमात्मा का आपको परिचय मिला, आपको गोद मिली, इसलिए भाग्यवान। हर किसी को परिचय नहीं मिला। तो कहते हैं कि भगवान की नजर पत्थर पर भी पड़ जाए तो पत्थर भी पारस बन जाता है। तो आप सब कितनी महान भाग्यवान आत्मा हो कि भगवान की नजर आप पर पड़ी। और क्यों भाग्यवान कि आप देखो आज खुशी, शांति, संतुष्टता, इन सब खजानों को प्राप्त करने के लिए लोग कितना भटकते, सोचते ना खुशी मिल जाए, सफलता मिल जाए, शांति मिल जाए, भटकते हैं। पर आप क्या कहते हो कि अब हम बाबा के बच्चे बन गए तो ये सारे खजानों के हम क्या बन गए, वारिस, मालिक बन गए। इसलिए भाग्यवान कि सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन गया, खुशी तो हमारा खजाना बन गया। तो ऐसा आपको चिंतन करना, तो अब ये नहीं कि डिप्रेशन है, तनाव है, ये सब कल तक था। आज से तो मैं भगवान का हूँ, भाग्यवान हूँ, जो प्रभु के घर में, प्रभु के परिवार में जन्म हुआ, भगवान की नजर मुझ पर पड़ी, सारे खजानों का मालिक बन गया। इसलिए भाग्यवान कि प्रभु के वरदानों के नीचे ही आप हैं, प्रभु की छत्र छाया में ही पल रहे हैं। इसलिए भाग्यवान कि हजार भुजाओं वाला भगवान किसके साथ है, आपके साथ। इसलिए भाग्यवान कि भगवान से अब दूर का संबंध नहीं है, अभी तक भगवान कहते थे पर अब भगवान आपका बाबा है, दोस्त है, नजदीक का संबंध जुड़ गया। तो अब आज आप क्या करना कि आपका नया जीवन शुरू हुआ। अब आप ध्यान से सुने आज का होमवर्क कि अभी तक की जो भी आपकी जीवन कहानी आज तक के जीवन की या कोई तनाव चिंता बोझ समस्या या जो भी कुछ गलतियां आपके मन में खा रही हैं, क्योंकि आज आपको अपनी सारी मन की स्लेट क्लीन करनी होगी, क्योंकि कल हम आपको इस नए जन्म का ईश्वरीय जन्म का लक्ष्य देंगे। पर वो लक्ष्य आप कब इस पर लिख सकोगे नई स्लेट पर, जब सारी क्लीन हो जाएगी। तो अभी तक का तनाव बोझ विघ्न जो भी आपके मन में हो, वो सारा आप जीवन कहानी एक पत्र के रूप में बाबा के नाम लिखना। आज का ये होमवर्क है कि अभी तक आपने मनुष्य आत्माओं को पत्र लिखे होंगे, पर आज किसको पत्र लिखना? डायरेक्ट परम पिता परमात्मा शिव बाबा को, भगवान के नाम खत। और क्या लिखना उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, उसको पत्र कहाँ डालना वो एड्रेस बताते, लेटर बॉक्स भी बताते आपको। हा? भाई लेटर बॉक्स लाना बाबा का, और ईमानदारी से लिखना। ये लेटर बॉक्स कहाँ रहेगा आपको बताते, ले आओ ले आओ, ये बाबा का लेटर बॉक्स है, यहाँ रखना। ये देखो बाबा के लिए लेटर बॉक्स बनाया, यहाँ लिखा बाबा के लिए पत्र, ठीक है। तो ये शिव बाबा को सारे लेटर पोस्ट हो जाएंगे। अब क्या क्या लिखना, यही आप लिखना कि प्यारे परम पिता शिव बाबा के नाम एक खत। क्या लिखना उसमें? अभी तक की पूरी जीवन कहानी, ताकि आप पूरे हल्के हो जाओ। कोई तनाव हो बोझ हो सब लिखना, सारा खाली कर देना। अच्छा, कई सोचेंगे कि बहन जी क्यों लिखने को कह रही है, बाबा तो सब जानते ही है, शिव बाबा को। तो ये बात सच है कि बाबा सब जानता है, पर देखिए कहते हैं कि अगर हम कोई चीज लिखकर किसी को दे देते हैं तो फिर जिम्मेवारी किसकी हो जाती है, उसकी हो जाती है। तो अगर आप बाबा को सब लिखकर दे देंगे तो आपके जीवन की जिम्मेवारी बाबा की हो जाएगी, फिर आप हल्के, सारा बोझ आपका बाबा खींच लेगा। इसलिए आज सब कलम चलाना, कोई भी इसमें आलस्य नहीं करना। आप खुद देखोगे कि आपने पत्र लिखा और सारा बोझ आपका जैसे बाबा ने खींच लिया। लिखते ही आपको एक खुशी मिलेगी, कुछ बाबा से वरदान मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का यही होमवर्क। अच्छा, फिर पत्र का क्या करेंगे? आप सोचेंगे पढ़ लेंगे बहन जी, ये कहाँ डालना क्या करना ये सब बताते। कल इस पत्र को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आज आप दिन भर बैठकर लिखना। कल इन सारे पत्र को यहाँ एक यज्ञ रचा जाएगा, और उस यज्ञ में स्वाहा माना सारा पुराना जीवन का जो भी कचरा बोझ वो सब खत्म, और फिर नया जन्म शुरू होगा। तो ये जो पत्र बॉक्स है, लेटर बॉक्स, ये अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो अपना सेवा केंद्र है वहां रहेगा। एड्रेस है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पीस पैलेस, जेल रोड, सभी जानते होंगे। और कब डालने आना, पत्र डालने का समय कि सारा दिन तो आपको लिखना पड़ेगा, सोच सोच कर बहुत सी अंदर बातें होंगी, है ना, अंदर कचरा सब जमा होगा, सब खाली करना है। शाम को आप आए 5 बजे से लेकर रात को 8:30-9 तक भी आएंगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो 8:30 तक आप आए तो स्पेशल वहां बाबा का एक रूम बना है, मेडिटेशन रूम, वहां ये लेटर बॉक्स रहेगा। और ऐसा नहीं कि बस पत्र डालना है तो डाला और चले गए, वहां उस मेडिटेशन रूम में आप 10-15 मिनट बैठना, 15 मिनट 20 मिनट जिसकी जितनी इच्छा हो। जो पत्र आपने लिखा है वो बाबा को सुनाना, क्योंकि सब कुछ किसको अर्पण कर रहे हैं, शिव बाबा को, सारा सुनाना और फिर पत्र डालना और सब कलम चलाना, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क है कि आज बाबा के नाम आपको पत्र लिखना है। कोई सी भी लैंग्वेज में आप लिखो, बाबा तो भावनाओं को समझता है। कई पूछते हैं बहन जी नाम भी लिखना क्या पत्र के नीचे, तो आपकी इच्छा हो तो लिखना, नहीं इच्छा हो तो नहीं, ये आपके ऊपर है। पर पत्र डालने का समय शाम को 5 से 8:30 के बीच आप आ सकते हैं, और पीस पैलेस में वहां मेडिटेशन रूम बना है। अब हम आपको बताएं कल का सेशन, पूरे 11 दिन के शिविर का जितने भी आपको मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट सेशन है, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना है लगा लो। कल हम आपको मक्खन बताएंगे, कल हम आपको बताएंगे कि पूरे मनुष्य जीवन का सार क्या है। समय की पहचान देंगे आपको कि वर्तमान समय इस सृष्टि पर कौन सा समय चल रहा है। तो कल यहाँ पर सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और कल हम बनाएंगे एक बहुत बढ़िया उत्सव, स्वयं पर स्वयं की महाविजय का उत्सव। बहुत शानदार उत्सव रहेगा वो, आप सब कल देखना। इसलिए कल का टाइम हम ज्यादा रखना चाहते हैं। कल 2 घंटे का होता है पूरा कार्यक्रम, तो कल ठीक 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। 6 बजे से लेकर 7:30 तक कोर्स चलेगा, बहुत गहराई का कोर्स है कल। और 7:30 से 8 बजे तक यहाँ पर स्वयं की स्वयं पर महाविजय का उत्सव मनेगा। यहाँ कल एक यज्ञ भी रचा जाएगा, उस यज्ञ में क्या स्वाहा करना आपको बताएंगे। पर अभी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कल के उत्सव के लिए आप सबको अपने घर से एक एक मोमबत्ती लानी है। क्यों घर से मंगवा रहे हैं उसका भी रहस्य। सभी याद रखें कि कल आप सबको एक एक कैंडल अपने साथ लानी है, क्योंकि वो महाविजय की लो आपके भीतर से ही कल प्रज्वलित होगी। तो याद रहेगा सभी को, हाथ उठा दो तो हमको रहेगा कि हाँ सभी को। तो कल जब आप यहाँ आए तो अपने साथ एक कैंडल लेके आना, ठीक है। क्या उत्सव है वो कल आप देखना। तो कल मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन, और ये आपको बता ही दिया कि कल पूरा नहीं होता है ये, कल के बाद भी 15 डेज का एडवांस कोर्स मुरली का सेशन है। नटशेल में हम ये कह दें कि मुरली जड़ों से आपको परिवर्तन करेगी। जो आप लोगों को बताया था हमने एक सेशन में कि हम आपको पॉजिटिव थॉट्स की खान देंगे, वो मुरली है। कई भाई बहनों ने कहा बेंजी अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये परिवर्तन स्थायी रूप से जीवन में समा जाए उसके लिए मुरली इम्पोर्टेंट है। वो क्यों सुनना जरूरी, क्या है वो कल सब एंड में बताएंगे। तो परसों से 3 तारीख से स्पेशल एडवांस कोर्स मुरली का शुरू होगा। अब आप सभी ध्यान से सुने कि 3 तारीख को आप सबकी मुरली की क्लास यहीं पर चलेगी, इसी समय जैसा रोज चलता है 6 बजे। 4 तारीख से हमारी जो बड़ी बहन जी आदरणीय सरला दीदी यहाँ पर, उन्होंने आप सबके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट पे मुरली की भी अलग अलग टाइम बनाया है कि भाई 11-12 दिन तो आप सब इतने प्यार से उमंग से एक ही टाइम पर आए। तो वैसे तो रोज मुरली आप सुबह के समय सुने तो वही अच्छा, फिर भी देखिए अलग अलग स्थानों पर कैसे चलेगी मुरली, आपको जहां अटेंड करना हो। सुबह का भी समय रखा है, शाम का भी रखा है। किसी को सुबह का नहीं समय सूट होता है तो शाम को भी आ सकते हैं। मुरली का समय 1 घंटा होता है, सुबह 6 से 7, या किसी को 6 से 7 समय सुबह सूट नहीं होता तो शाम को भी 7:30 से 8:30 आ सकते हैं। पर वैसे तो सुबह सुनेंगे तो ही उसका ज्यादा इफेक्टिव फायदा है। अब स्थान क्या रहेगा, 3 तारीख तक तो यहाँ, 4 तारीख से एक तो अपना जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी इसका पीस पैलेस वहां पर, और अगर किसी को वो स्थान दूर पड़ता हो तो ONGC कम्युनिटी हॉल अनुपम सोसाइटी के सामने सेंट्रल स्कूल के पास में, वहां पर भी चलेगी। समझ रहे सभी, 2 जगह क्लासेस चलेंगी, एक तो अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, या किसी को वो स्थान दूर पड़ता हो तो ये ONGC कम्युनिटी हॉल में जो सेंट्रल स्कूल के पास में है वहां भी आ सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो सुबह के समय मुरली क्लास है, थोड़ा सा ये कि सुबह दोनों जगह चलेगी, सेंटर पर भी और कम्युनिटी हॉल में भी। शाम के समय मुरली केवल सेंटर पर ही चलेगी, हॉल में नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर माताओं बहनों को ये समय नहीं सूट होता सुबह 6 से 7, तो आपके लिए विशेष ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेंटर पर ही 4 से 5 बजे का भी समय रखा है। दोपहर को आप आना चाहते हैं 4 से 5, तो ये 3 टाइम हो गए। एक टाइम 6 से 7 सुबह, दूसरा 7:30 से 8:30, तीसरा 4 से 5। इन तीनों में से जो भी समय जिसको 1 घंटे का सूट करे। मुरली क्यों जरूरी, वो सब कल की बात, पर कैसे क्या चलेगा। परसों का सेशन सबका इकट्ठा यहाँ चलेगा, 3 तारीख हम आपको मुरली सुनाएंगे, उसका टेस्ट तो कराएंगे ना कि क्या चीज है ये। तो इस तरह से मुरली की क्लासेस चलेंगी और 1 घंटा टाइम रहेगा, उसमें आपको 15 मिनट मेडिटेशन कराएंगे और 1.25 घंटा बाबा के महावाक्य सुनाए जाएंगे। कल भी हम अनाउंस करेंगे ये, पर आज भी आपको इस तरह बताया कि इस तरह से मुरली की क्लासेस चलेंगी। अब हम आप सभी का आज जो अलौकिक जन्म हुआ है, तो आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन फिर एक बार रिवाइज करा दें। क्या स्पिरिचुअल इंजेक्शन हुआ? मैं भगवान का हूँ और भाग्यवान हूँ। तो आज सारा दिन आप सबको अपने भाग्य की खुशी में रहना है। और अभी हम बहुत डीप मेडिटेशन की अनुभूति में चलेंगे। आज भी जब तक आपको नहीं बोले आंखें नहीं खोलना। हम अपने जन्म उत्सव को भी मनाएंगे, पर ये आप सभी को याद रहे कि कल का सेशन स्वयं पर स्वयं की महाविजय उत्सव, और कल 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपका कोर्स चलेगा। और ये पत्र बॉक्स वहाँ रहेगा, आप सभी शाम को आएंगे और वहाँ बाबा के नाम लेटर डालेंगे। ओम शांति। सभी अपनी आंखें बंद कर लें, आज के मेडिटेशन में सब आंखें बंद करो और कोई भी बीच में उठे नहीं। जिसको जरूरी है भले ही वो पीछे जाके अभी बैठ जाए, पर एक भी बीच में नहीं उठना आज। सभी चले अपने भीतर की ओर, चलिए हम अपने भाग्य के गुण गाएं। मैं इस संसार में सबसे महान आत्मा हूं। मुझ जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। मैं भगवान का हूं और भाग्यवान हूं। वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य जो आज मेरा नया जन्म प्रभु की गोद में हुआ, प्रभु के परिवार में मैंने नया जन्म लिया। मैं आत्मा प्रभु परिवार का बालक बन गई। इस नए जीवन को पाकर, दिव्य जीवन को पाकर मैं आत्मा बहुत खुश हूं। सचमुच मुझ जैसा भाग्यवान कोई और नहीं, जो संसार की करोड़ों आत्माओं में से और कोटों में से भी कोई मुझ आत्मा को अपने परम पिता की पहचान मिली, ईश्वर की गोद मिली, भगवान की नजर मुझ पर पड़ी, भगवान ने मुझे पसंद किया, सचमुच मैं कितनी भाग्यवान हूं कि अब भगवान से मेरे सारे संबंध जुट गए। अब वो मेरे सामने भगवान के रूप में नहीं पर मेरा बाबा है, दोस्त के रूप में हर कदम साथ है। सच कितने समीप हो गए हम भगवान के, कभी स्वप्न में भी नहीं था। वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य कि जिन खजानों को पाने के लिए लोग तड़फते हैं, उन सारे खजानों की मैं आत्मा वारिस बन गई। खुशी का खजाना, सफलता, सब मेरा जन्म सिद्ध अधिकार बन गया। बाबा, मैं आत्मा आपका कितना दिल से शुक्रिया करूं कि आपने मुझे दुख की जंजीरों से छुड़ाकर, चिंता की चिता से निकालकर अपनी गोद में लिया, मुझे नया जीवन दिया। सचमुच कितनी भाग्यवान हूं मैं कि जिस भगवान को पाने के लिए लोग साधनाएं करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, एक सेकंड की झलक के लिए तड़पते हैं, आज से मैं उसका बच्चा बन गया। मैं उससे बात करता हूं, उससे शक्तियां लेता हूं। आज से बाबा मेरे पुराने जीवन की सभी चिंताएं, बोझ, समस्या सब आपके हवाले। आज से अब मैं आत्मा एकदम निश्चिंत हो गई। बाबा, अब आज से मैं आत्मा आपकी ही आज्ञाओं पर चलूंगी, तो सभी अपने भाग्य के गुण गाते रहें कि मैं भगवान का हूं, भाग्यवान हूं। मैं प्रभु के वरदानों के नीचे हूँ, खुशी मेरा खजाना है, हर कदम में हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। सचमुच कभी स्वप्न में भी नहीं था कि मुझे ईश्वर की गोद मिलेगी, ईश्वर के वरदान मिलेंगे। सच कितनी भाग्यवान हूं मैं जो आज के दिन मेरा नया जन्म प्रभु के परिवार में प्रभु की गोद में हुआ, जो भगवान ने मुझे पसंद किया। इस नए जन्म को पाकर मैं आनंदित हूं। मगन हो जाए अपने भाग्य के गुण गाते रहें। मैं भगवान का हूं और भाग्यवान हूं। मेरा जन्म प्रभु की गोद में प्रभु परिवार में हुआ।
मधुर मंगल में तुम्हारा जन्मदिन हो, मधुर मंगल में तुम्हारा जन्मदिन हो, मधुर मंगल में तुम्हारा जन्मदिन हो, मधुर मंगल में तुम्हारा जन्मदिन हो। तुम हंसो खेलो खिलो हर वर्ष के संग, प्यार के उल्लास में रंग जाए अंग रंग। जिंदगी की हर किरण हो, मधुर मंगल में तुम्हारा जन्मदिन हो, मधुर मंगल में तुम्हारा जन्मदिन हो, मधुर मंगल में तुम्हारा जन्मदिन हो, मधुर मंगल में तुम्हारा जन्मदिन।
आज तुम्हारा जन्म दिवस, आज तुम्हारा जन्म दिवस, आज तुम्हारा जन्म दिवस। आज तुम्हारा जन्मदिवस, हम गीत खुशी के गाएं, हम गीत खुशी के गाएं, हम गीत खुशी।
खुशी के गाए, हम भी खुशी के गाए।
आज तुम्हारा जन्मदिवस,
हम भी खुशी के गाए, हम भी खुशी के गाए, हम भी खुशी के गाए, हम भी खुशी के गाए।